ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 आदरणीय रोटेरियन सुरेंद्र मांजरेकर जी रोटेरियन वीरेंद्र विज मोहन लाला जी अमरनाथ रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन विनायक गंगांवकर जी रोटेरियन अशोक पंड्या जी एवं प्रेसिडेंट की भी प्रेसिडेंट श्रीमती वसंती गंगांवकर जी आप सबको हमारा अभिवादन है और दीपावली के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली हम लोगों का प्रकाश पर्व है। घर घर दीपक जलते हैं। धर्म की संस्थापना के इस प्राचीन पर्व पर हम सब लोग अपने घर में भी यही दीपक संकल्प पूर्वक जगाते हैं। यहाँ पर रोटेरियंस के मध्य में जब हम आए हैं, अनेकों वर्षों से मोहन लाला जी और अनेकों रोटेरियंस से हम परिचित रहे हैं, हम सर्वप्रथम रोटेरियंस को विशेष रूप से बधाई देंगे कि आप एक ऐसे सिद्धांत, सनातन सिद्धांत को ही अपने हृदय में हृदयान्वित करते हुए इस दिशा में कार्य कर रहे हैं जो कि एक संवेदनशील समाज का निर्माण करता है। ये यहां पर हमारे सामने ही एक फोर वे टेस्ट का बोर्ड लगा हुआ है कि कोई भी कार्य करने से पूर्व हम ये प्रार्थना करते हैं, हम ये चाह रखते हैं कि जो भी कार्य करें वो सत्य हो, जो हम कार्य करें वो सबके लिए उचित हो, कल्याणकारी हो, जो हम कार्य करते हैं उससे चारों तरफ एक सुंदर संवेदना स्थापित हो और सबके लिए कल्याणकारी हो। ऐसे हृदय में प्रार्थना, इस प्रकार की भावना जिस इंसान के अंदर भी है उसको हमारा प्रणाम है। उसी के अंदर दैवी भाव विद्यमान है। वो किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, वो इंसान के अंदर इंसानियत विद्यमान है। अभी कुछ समय पूर्व हमको हमारा कनाडा जाने का सौभाग्य हुआ। वहां पे किसी के घर में बैठ के रात का भोजन चल रहा था। जो यहां से अनेकों हिंदुस्तानी लोग गए थे और जो कुछ हमारे साथ हमारे भक्त लोग भी थे, सब ये बड़ी बड़ी टेबल थी डाइनिंग की, उसमें बैठे हुए थे और भोजन कर रहे थे। जिस समय विदेश जाएं तो एक चर्चा काफी सुनने को आती है, जो लोग पहले पहुंच गए हैं वो वहां का औचित्य स्थापित करते हैं कि हमारा विदेश में आना बिल्कुल उचित था और आप लोगों का क्या इंडिया है। इस प्रकार की बातें चल रही थी। दोनों ने बोला, देखिए आप लोग सब कनाडा आए, स्वामी जी आप भी कनाडा आए, देखिए कनाडा हमारा, कनाडा हमारा, कनाडा, काफी बातें करने लगे। और उसी से ही जो है आक्रोशित होते हुए दूसरा वर्ग बैठे हुए थे, बोलते हमारा इंडिया। तो एक हमारा इंडिया पार्टी हो गई और एक हमारा कनाडा पार्टी बन गई। वहां पे दोनों दलीलें दे रहे थे कि देखिए यहाँ की समाज किस प्रकार से स्वच्छता है, किस प्रकार से निर्मलता है, कैसे इंसान और पशु पक्षी सबके प्रति संवेदना विद्यमान है, यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं है, हवा कितनी निर्मल है, यहाँ का जल कितना निर्मल है, बिस्लेरी भी नहीं लगती, बोलते नल खोल के कहीं से भी पानी पी लो। इतना बढ़िया जल है और यहाँ पे जो है वृद्ध लोग हों, बच्चे हों, वृद्धों को जीने की इज्जत विद्यमान है। बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि क्या आपका कनाडा है, हमारी संस्कृति देखिए, हमारा प्राचीन इतिहास देखिए, यहाँ पे आध्यात्मिक धरोहर देखिए, यहाँ के मूल्य देखिए, अनेकों चीजें वो दलीलें दे रहे थे। और जो होना था वही हुआ। बात हमारे ऊपर आई, बोलते हैं स्वामी जी आप बताइए क्या सत्य है। तो दोनों पार्टियों में फिर हमको बताना पड़ा है कि हमारा क्या सत्य है। हमने बोला भाई नहीं, हम कनाडा पार्टी हैं, नहीं हम इंडिया पार्टी हैं। अब अनेक लोगों को आश्चर्य लगा, बोलते हैं स्वामी जी आप एंड यू आर नॉट इंडिया पार्टी। बिल्कुल नहीं, हम इंडिया पार्टी नहीं है। हमने ये अपना भीष्म पितामह जी से जो है शिक्षा ली है। भीष्म पितामह जी का ऐतिहासिक एक जो है भूल हो गई थी, वो भूल अब हम नहीं करेंगे। भीष्म पितामह जी की भूल ये थी कि उन्होंने बोला कि जो भी ये कुर्सी पे बैठेगा उसका हम साथ देंगे, जो भी इंसान अगर इस कुर्सी पे बैठेगा वो सत्य होगा, वो उचित होगा। हमने बोला ऐसा नहीं हम करेंगे। देखिए कैसे हमारे भीष्म पितामह जी तो धर्मनिष्ठ थे, बहुत ज्ञानवान थे। जिस समय वो शरशैया के ऊपर पड़े हुए थे तो वहां पर भी उन्होंने लोगों को ज्ञान का उपदेश प्रदान करा। हम लोग जिस विष्णु सहस्र नाम को पढ़ते हैं वो भीष्म पितामह जी ने वही कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों के ही बेड के ऊपर लेटे लेटे दुनिया को प्रदान करा था। बड़े भारी ज्ञानी थे। लेकिन वो भीष्म पितामह जी के जीवन की एक भूल यह हो गई कि उन्होंने ऐसी चीज को महत्व दिया जो कि जड़ है। उनके जीवन की यह शिक्षा थी कि देखिए यह कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, यह यहां पे जगह महत्वपूर्ण नहीं है। कनाडा और इंडिया और ये सब विभाजन तो हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, ये प्रभु ने नहीं बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए। उन्होंने तो हमको एक अखंड दुनिया प्रदान करी है, हमने विभाजन करा हुआ है सब। उन्होंने कहा कि हमको जीवन में सत्यनिष्ठ होना चाहिए। जो धर्म से निष्ठ है, जो धर्म तुल्य है, जो धर्म की आस्थाओं से युक्त है, जो जीवन से सत्य से संबद्ध है, हम उसकी पार्टी के हैं। भले वो रंग जो है काला हो, गोरा हो, सफेद हो, कैसा भी रंग हो, जो अगर सत्यनिष्ठ है उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको हम वंदना करते हैं। अगर हम मात्र ये कहें कि हमारे जो भी भारत में है अच्छा है, तो आज का यहां का हम अनैतिकता, करप्शन, उसके भी हम भागी बन जाते हैं, क्योंकि वही हमारे आज देश के अंदर विद्यमान है। बाहर जाके देखें तो अपने देश के अंदर हमको दिखाई पड़ता है कितनी कमियां हो गई। क्या ये वही भारत देश है जहां पे फाहियान वगैरह आके बोलते थे, यहां कोई झूठ ही नहीं बोलता है, कोई ताले ही नहीं लगाता है घर में। वो कौन सा शनि मंदिर है, वहां पे आज भी ताले नहीं लगाते हैं ना। इतिहास के अंदर प्रमाण है कि हम चारों तरफ दुनिया में घूमे, लेकिन ये भारत देश बड़ा निराला है। यहां लोगों के मूल्य इतने अद्भुत विद्यमान है कि उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पता नहीं इनके रगों में कैसा खून विद्यमान है, कैसे संस्कार है, कैसी शिक्षा है, अद्भुत है। और ये केवल पहियान आदि बहुत प्राचीन इतिहास की बात नहीं है। लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह बताया, अगर हम लोग चारों तरफ विजय तो प्राप्त कर चुके हैं, अगर भारत में भी विजय प्राप्त करनी है तो हमको यहां के लोगों की आस्थाओं के ऊपर आघात करना पड़ेगा। जब तक इनकी आस्थाओं के ऊपर आघात हम नहीं करेंगे तब तक हम इनको जीत नहीं सकते हैं। ये बात उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आज इस चीज का एविडेंस विद्यमान है, सब लोगों के सामने उनकी बातें हैं। उनको लाइसेंस मिला कि चलो ठीक है, यहां की लोगों की आस्थाओं को कैसे तोड़ा जाए। उनका लक्ष्य तो बड़ा स्पष्ट था, राजा का लक्ष्य था कि हमको तो राज्य करना है और हमारे ही अधीन लोग होने चाहिए, इसीलिए जो करना है करो, लोगों की आस्थाएं तोड़ो, लोगों की परंपराएं तोड़ो, उनके धर्म के ऊपर आघात करो, जिससे कि उनका स्वाभिमान खत्म हो जाए, जिससे उनके अंदर अपने ही परंपरा, अपने पूर्वजों के प्रति उनसे संबद्ध रहने में भी उनको संकोच और शर्म आने लगे। इस प्रकार से तुम व्यवस्था करो, शिक्षा के अंदर परिवर्तन करा, जिसमें परिवर्तन करा, और धन्य है उन लोगों की नीतियां, उन लोगों ने यह कार्य कर दिखाया। आज के समय यहां पे लोग ये बोलने में भी संकोच करते हैं कि हम जो है हिंदू हैं और हम भारतीय हैं, जैसे कि बहुत हम बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बात सिद्ध हो गई है, और जिस समय हमारी ऐसी परंपराओं के प्रति एक स्वाभिमान खत्म हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, इसी के साथ साथ वो नैतिकताओं की परंपरा का भी ह्रास हो गया है। ये वही देश था जहां पे आपको कोई किसी से चिंता करने की बात ही नहीं थी, सुख दुख में सबको काम आते थे। विदेश में जो है वहां हमको बताया कि एक बार जब आदमी मर जाता है तो वहां लोग पहुंचते ही नहीं है, और यहां पे गांव में एक आदमी का देहांत हो जाता है, घर बार मोहल्ले सब लोग कैसे भाव से जुड़ते हैं, जैसे हमारा ही कोई अपना व्यक्ति गया है, इतना अपनापन। एक गांव के अंदर हम गए, वहां पे किसान ने खेत काट रहा था, फसल काट रहा था अपनी, फसल काटने के समय उसने एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया था। हमने उससे पूछा, क्यों भैया ये आपने छोड़ क्यों दिया है, क्या रोगी है ये, इसके क्या बीज खराब हो गए हैं? बोलता है, नहीं महाराज ये हमारे कोई खराब नहीं हुए, देखिए कितने अच्छे स्वस्थ हैं, ये हमने यहां पे पक्षियों के लिए छोड़ा होगा। बोलते हम कल्पना भी नहीं कर सकते बगैर इन पक्षियों के योगदान के हमारा जीवन क्या रहेगा, हम इनके ऋणी हैं, इनकी सवेरे चहचहाट, इनके द्वारा ही हमारे अनेकों फल फूलों का अच्छी तरीके से वृद्धि होना, आजकल हम जानते हैं पॉलिनेशन होना और इनका फर्टिलाइजेशन होना, सब इन्हीं पक्षियों के ऊपर ही निर्भर होता है, कीटाणु हमको नहीं लगते हैं। चीन में एक बार बहुत ज्यादा जो है रोग फैलने लगे तो उन्होंने बोला, समस्या क्या है? बोला, आपके वहां पक्षी खत्म हो गए भैया, ये हमारे नेचुरल इंसेक्टिसाइड थे, आपने ऐसी जो है यहाँ केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्रयोग करना प्रारंभ करा है, बेचारे पक्षी खत्म हो गए, और इसीलिए आपके वहां इतने रोग फैल रहे हैं कि आपको जो है चिंता का विषय हो गया है कि हमको क्या करना चाहिए। ये आपकी संवेदना खत्म हो गई थी चारों तरफ, पशु पक्षी प्राणियों के प्रति, ये पूरी सृष्टि के प्रति, लोगों के प्रति संवेदना खत्म हो गई। आज हम आप समस्त लोगों से निवेदन करते हैं कि इस दिवाली पे एक ऐसा हृदय में दीपक जलाना है हमको, कि हमको जो जीवन में सत्य है, जो कल्याणकारी है, जो यहां पे पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, बल्कि जैसे अनेकों जो है एनवायरमेंट वाले बोलते हैं कि ये देश, ये दुनिया, आई हैव नॉट इनहेरिटेड इट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हैव बोरोड इट फ्रॉम माई चिल्ड्रेन, ये हमारे बच्चों की धरोहर है, ये कल इसी हवा में वो बच्चे लोगों को सांस लेनी है, इसी दुनिया में उनको जीना है जिस दुनिया को हम बना के यहां पे छोड़े जा रहे हैं। हम आज अपने किसी न किसी अहम की संतुष्टि, वासना की संतुष्टि, अपनी अनेकों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति में धीमे धीमे हम लोग अंधे हो जाते हैं। ऐसा अंधापना हो गया है कि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हवा पानी दूषित हो चुकी है, यहां पे शहरों में रहना दुश्वार हो गया है, ये हम लोगों को क्या होता जा रहा है। यहां पे कोई समाज के अंदर कार्य करो, अपने ही लोगों का शोषण होने लगता है, नैतिकता का इतने हद तक ह्रास हो गया है कि इंसानियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। कई बार किसी को बोलो, क्या जानवरों की तरह काम कर रहे हो, जानवर लोग आपत्ति उठाएंगे कि ये हमारे से तुलना कर रहे हो आप, इसकी हम लोग तो ऐसा कभी नहीं करते। यहां पर जो है इस प्रकार की दुर्दशा होती जा रही है हम लोगों के वहां पे समाज में, और केवल हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, आज ये पूरे विश्व की हाल हो गया है। अनेकों प्रकार के अनैतिक चीजों की इतनी वृद्धि होती जा रही है कि बड़े बड़े दार्शनिक लोग इस चीज के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, फिलॉसफी का एक सेक्शन बन गया है एथिक्स, एथिक्स इज अ सब सेक्शन ऑफ फिलॉसफी, which discusses morality. क्या morality होती है, क्या उचित होता है, क्या एक देश और दूसरे देश में कसौटियां भिन्न हो जाती हैं, यहां पे हमारे लिए जो उचित है क्या बाहर दूसरे देश में जाके उचितता का प्रमाण बदल जाता है, क्या वहां पे कुछ भी चलता है यहां पे ये नहीं चलेगा, क्या ऐसा होता है? What is really right? किस चीज को बोलते हैं सही चीज है? ये बहुत ज्वलंत मुद्दा हो गया है और विशेष रूप से आजकल जिस समय समस्त देश और काल की बाउंड्रीज खत्म हो रही है, जितने सारी सीमाएं थी वो पिघलती जा रही है। आज हम नाश्ता यहां करते हैं, लंच जाके जो है पेरिस में करते हैं, डिनर जाके जो है वॉशिंगटन में करते हैं। इस प्रकार की दुनिया छोटी हो गई है। यहां पे किसी से बात करनी हो तो आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ईमेल है, VIPs हैं, जो भी अनेकों प्रकार की चीजें हैं, आपको कहीं पर भी कोई चर्चा करने में विलंब नहीं हो रहा है। और देखने की समस्या हो तो अब तो 3G भी आ रहा है ना हम लोगों के पास, यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर लेंगे, उसको देख भी लेंगे, यहां तक कि इंटरनेट में तो अब सुगंध भी ट्रांसफर हो रही है। जो सुगंध या दुर्गंध उस व्यक्ति के पास थी वही आपको यहां पर सूंघने को मिलेगी। ये सब ऐसी क्रांतियां हो रही हैं, दुनिया छोटी हो गई है। और इसीलिए अब हम लोगों को जो है ये मात्र सोचना कि हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में मात्र अच्छा बना रहे, बाकी आई एम एन आइलैंड ऑफ पीस एंड ब्यूटी एंड एथिक्स, और बाकी दुनिया को कुछ भी हो। अब हे मित्रों, ये हम लोगों को नहीं चल पाएगा। अब हम लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि बाहर जो भी होता है वो हमारे ही घर के अंतर्गत की एक बात हो रही है। हमारे अंदर नैतिकता ये उत्पन्न करने की परम आवश्यकता हो गई है। आपने धन दौलत कमाया नहीं कमाया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, नैतिकता कितनी है ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अनेकों प्रकार की समृद्धि के उपरांत आपने नैतिकता खो दी तो आप सोच लीजिए सब कुछ खत्म हो गया है। और उसका परिणाम यह होगा कि आपके ही अपने लोग अपने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप अपने किसी के हुए ही नहीं है, आपने किसी के प्रति संवेदना का परिचय नहीं दिया है। हम लोग जिस समय अपने पूर्वजों को किसी प्रकार से कोई तर्पण नहीं करते हैं, हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के श्राद्ध आदि कर्म नहीं करें, तो यही आपको होगा कि आपके वृद्धावस्था में आपके बच्चे आपको घास निकालने वाले, क्योंकि हमको ये कोई आदर्श ही नहीं मिला है। फिर बोलेंगे हमारे किस्मत में क्या हुआ, हे भगवान आप कैसी दुनिया चला रहे हैं। भगवान इज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग, यू नो, पंचिंग बैग, वो पंचिंग बैग है, कुछ भी हो तो भगवान के ऊपर जो दो चार जाके हमने बॉक्सिंग मारी, भगवान क्या कर रहे हैं आप। एक हमारे भगवान है जो कैलाश में ध्यानस्थ रहते हैं, दूसरे भगवान विष्णु हैं जो शेषैया के ऊपर योग निद्रा में रहते रहते हैं। तो भगवान जरा उठिए, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। भगवान ने तो ऐसी दुनिया बनाई है, हम सब लोगों को सक्षम कर दिया है, इसीलिए वो विश्राम में है। जब आप अपने संतान को अच्छी तरीके से शिक्षित समर्थ बना देते हैं तभी तो आप आराम से सो सकते हैं। इतना सामर्थ्य भगवान ने हम सब लोगों को दिया है कि भगवान ने अपने रूप में हमको बना दिया है। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सारूप्य मुक्ति हो जाती, भगवान जैसे आप बन सकते हैं, सालोक्य होती है, और कैवल्य मुक्ति होती है, तन रूप हो जाते हैं आप। यह समस्त संभावना आपके सामर्थ्य की है। आज सवेरे ही हम लोग बैठे हुए थे चाय में, तो सवेरे चर्चा हो रही थी कि स्वामी जी ये यहां पे सब कुछ लिखा होता है, सब भगवान ने पहले से लिख दिया है कि कुछ हम लोग भी कर सकते हैं। हमने वहां पे प्रश्न करने वाले को बताया कि देखिए भगवान श्री राम जिस समय अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पढ़ने गए थे, योग वशिष्ठ में उस पूरे संवाद का संकलन है, वो पूरा जो है आज भी हम सब लोगों के लिए उपलब्ध है। उसके अंदर जो है वहां वशिष्ठ जी बताते हैं कि हे राम, जो भी व्यक्ति ऐसा प्रश्न भी करता है कि लिखी हुई है किस्मत, ये सब होने वाला है, ये प्रभु इच्छा है। बोलते वो इतना ज्ञानी है, इतना अनाड़ी है, उसने कभी सत्संग भी नहीं कराया। बोलते हैं प्रारब्ध किसको बोलते हैं, पूर्व कर्म किसको बोलते हैं, आपके द्वारा करे हुए पूर्व जन्म के कर्म हैं ये। आप वो करता है, आप कर्म करने वाले हैं जिसने उस प्रकार के कर्मों की संरचना करी हुई है, आपने उस प्रकार के बीज डाले हुए हैं, और आज बीज जब वो फसल लुका रही है तो आप बोलते हैं भगवान की इच्छा। वो बीज आपने डाले, जो बीज डालने वाला है वो आज भी यही विद्यमान है, यही जीव है, यही करता है, यही पुरुषार्थ करने वाला है। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे राम, प्रारब्ध नाम की कोई स्वतंत्र चीज होती ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि प्रारब्ध कोई स्वतंत्र वस्तु है तो वो ना समझ है, उसको पता ही नहीं है प्रारब्ध बनता कैसे। ये केवल व्यक्ति के पुरुषार्थों के द्वारा पहले पड़े हुए बीज को हम प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है, आपने पहले कुछ नासमझी में गलत डाल दिए बीज, लेकिन अब उसको हम पानी क्यों दे रहे हैं, अब उसको खाद क्यों दे रहे हैं, उसका संरक्षण क्यों कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज यहां पे कोई हमारे फूल निकल आए हैं, हम उस चीज के औचित्य की स्थापना क्यों कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यह दिशा गलत है तो हमको गाड़ी न्यूट्रल में चलाने की जरूरत थोड़ी है, गियर दबाओ दूसरी तरफ मोड़ो गाड़ी, और अगर ज्यादा समस्या है तो गाड़ी में रिवर्स गियर भी तो होता है ना भैया, आप रिवर्स चलिए। आपके पास स्टीयरिंग है, आपके पास जीवन की स्टीयरिंग है, आपके पास अपने विचारों की स्टीयरिंग विद्यमान है। और समाज किसको बोलते हैं, मनुष्य के समूह को ही तो समाज बोलते हैं। जिस समय सब लोग करने लगते हैं तो हमारे समाज में ऐसा होने लगा है। तो वस्तुतः यहां पे ये कहना कि समाज में ये हो रहा है, भैया समाज हम लोग हमसे आपसे कुछ अलग चीज ही नहीं है। यहां पे इतने सारे इश्यूज आज जो है एथिक्स के बारे में हो गए हैं। यहां पर जो है वो कुछ चीजें हम लोग कुछ गिना सकते हैं, इतनी ज्वलंत विषय है। तो हम लोग जिस समय आज के जो है यह विषय देखें, एथिकल प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े दार्शनिक लोग अरिस्टोटल, प्लेटो और इमैनुअल कांत, ये सब लोगों ने इतना गहराई से इसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं चारों तरफ। हम लोगों के ऋषि मुनि लोगों ने धर्म की स्थापना करी, धर्म केवल एथिकल लाइफ के पैकेज को बोलते हैं। और हम लोगों के बीच में यहाँ पे श्रीमद् भागवत के बड़े अच्छे विद्वान हैं। यह आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने पूरी श्रीमद् भागवत को मराठी भाषा में रूपांतरित करा है। आज इस चीज के प्रमाण है कि ये समस्त शास्त्रों में ये अनेकों मूल्य ही तो प्रतिपादित है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं 12वें अध्याय में, अर्जुन जो भक्त हमको प्रिय है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, तुम किसी से द्वेष न करो, जब भक्त ऐसा है वो हमको प्रिय है, जब तुम सबके प्रति करुणा रखो तो वो हमको प्रिय है, जब अनेकों के प्रति तुम मित्रता की भावना रखो तो तुम हमको प्रिय हो। तुमने भजन कर लिया, तुमने जप कर लिया, तुमने पूजा कर ली, वो मात्र हमको प्रिय है, इस भ्रम में मत रहना। अभी तो तुम अपनी संवेदना बढ़ा रहे हो, लेकिन हमको ऐसा भक्त प्रिय है, तभी उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता ये कह रही है, रामायण यही कह रहा है, उपनिषद यही कह रहे हैं। रामायण के अंदर जिस समय विभीषण जो है रावण के सामने खड़ा हुआ था, बड़ी विषम परिस्थितियां थी, भगवान नंगे पैर खड़े हुए थे, कोई कवच नहीं, कोई कुंडल नहीं, कोई मुकुट नहीं, एक धनुष बाण लिए हुए, और रावण बड़ा सुसज्जित, बड़ा पावरफुल दिखाई पड़ रहा है, रथ के ऊपर खड़ा है। विभीषण जो हाथ जोड़ के राम जी के पास आए, बोलते भगवान इट्स वेरी अनफेयर, आखिर कोई भी लड़ाई होती है तो शुड बी फेयर, दोनों समान रूप से हो, तब लड़ाई हो, तब का बल का परीक्षण हो। तो वहां पे ही लड़ाई रोकते हुए विभीषण को बड़े सुंदर उपदेश दिया। बोलते हैं विभीषण, जिस रथ के ऊपर बैठ के कोई भी लड़ाई जीती जाती है वो रथ नहीं है। तुम इस भ्रम में मत रहो कि ये संपन्न है, ये पैसे वाला है, ये सशक्त है। इन लोगों को गिरते हुए देर नहीं लगेगी। कोलैप्स कर जाता है पूरा समाज रोड के ऊपर, करोड़पति आने में देर नहीं लगती है। ये केवल आदमी के मन के अंदर कोई दोष होते हैं कैसे गिर जाता है। और किसी भी इंसान को ऊपर बढ़ने में भी कोई देर नहीं लगती है। राम जी बोलते हैं ये केवल जीवन के कुछ मूल्य हैं विभीषण, कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जिनसे युक्त होने के उपरांत आप अपने जीवन की लड़ाई जीत सकते हैं। और अगर आपके मन के अंदर ये श्रद्धा है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ लोगे। नहीं श्रद्धा है तो देखो, आंख खोलो, विचार करो, प्रमाण से देखो, युक्ति से देखो, अनुभूति से देखो, प्रयोग करो इन चीजों के बारे में। यहां पर जो भी अनेकों प्रकार के सुंदर मूल्य होते हैं यही हम लोगों के धर्म शास्त्र में बताए गए, लेकिन हम यहां पे दूसरे अनेकों दार्शनिकों की चर्चा कर रहे हैं, हम रोटरी के अच्छे मूल्यों की भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर हजारों साल से चली आ रही परंपरा है, कुछ लोगों ने इसको सुंदरता इसकी पहचानी है, इन्होंने प्रारंभ नहीं कराया। जिस समय इनका नामो निशान नहीं था तो भी इस देश में ये चीजें जी जाती थी, ऐसे लोग यहां पे इस चीज का समावेश करते थे, दुनिया भर के लोग आके उससे स्वाभिमान प्राप्त करते थे, प्रेरणा प्राप्त करते थे। ये ज्वलंत जीवित दृष्टांत था इस दुनिया का, ऐसी अद्भुत प्रकार की नैतिकता थी। नैतिकता हमारे मूल्यों की बाहरी दुनिया में अभिव्यक्ति को बोलते हैं। आपके मन के अंदर कोई भावना हो, कोई संवेदना हो, कोई सुंदर विचार हो, लेकिन इसका बाहर की दुनिया में मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, एथिक्स उस चीज को बोलते हैं। जिस समय आपके मन के अंदर सुंदर भावना हो, ये व्यक्तिगत आपको आनंद भी देगी, प्रसन्नता देगी, शांति देगी, लेकिन उससे समाज नहीं बदल जाता है। समाज के परिवर्तन के लिए आपके मूल्यों की बाहर की दुनिया में अभिव्यक्ति इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर इंसान के जीवन में यह कर्तव्य होता है कि आप अपने सुंदर विचारों को तो बढ़िया उदात्त बनाइए, महान बनाइए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि बाहर की दुनिया में इसकी अभिव्यक्ति करिए। गीता के अंदर जो है भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, कुछ चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। कभी भी जो है यहां ऐसी चीजों को त्यागना नहीं अर्जुन, अनेकों की सेवा करना, दान देना, जाके जो भी किसी की मदद हो सकती, किसी को अन्न दान दो, एक ऐसे संवेदना का परिचय दो कि तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी दुनिया में किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली है। और हमको सदैव धन के दान देने की जरूरत नहीं है, दिल होना चाहिए बस। अगर दिल है तो आपको किसी को किसी का दुख देखना आपको अच्छा नहीं लगे। ये बड़ी महान प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये प्रार्थना हमारा निवेदन है, प्रार्थना है आप सबसे, इसको अपने दिल में रखो आप, और पूरे दिल से जितनी आपका भावना होना इस चीज को अपने हृदय में उतारिए। ये नैतिकता के जीवन का नींव है, फाउंडेशन है। हमारे हृदय में ये भावना हो कि हमारे रहते रहते कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके घर को मिलेगा, हमारे माता पिता को मिलेगा, हमारे रिश्ते नाते, सास ससुर, अड़ोसी पड़ोसी सबको, कि यहां एक ऐसा इंसान विद्यमान है जो हमको पता है कि मुसीबत में काम आएगा। इस प्रकार का इंसान है जो हम लोग को जो है, हमारे घर वाले सब चले जाएंगे, बुढ़ापे में हम अकेले बैठे होंगे, लेकिन ये हमारा अपना है। पता नहीं फिर हम लोग प्रमाण देते पूर्व जन्म का रिश्ता होगा भैया इसके साथ, ये बहुत अच्छा इंसान है। ये यहाँ की मूलभूत शिक्षा है। एक संत थे, वो कहीं पर ट्रैवल कर रहे थे, कहीं जाते जाते उनको एक जगह बहुत अच्छा लगा। इतनी जगह सुंदर थी, इतनी पावन थी, इतनी प्रफुल्लता भरी वाली थी, वो वहां बैठ गए और देखा यहाँ कारण क्या है, इतना अच्छा लग रहा है। किसी किसी जगह जाओ तो मन घुटता है, किसी किसी जगह जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो तो परिव्राजक थे, ट्रैवलर थे, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने शोध करा वहां। वो बोला कारण क्या है यहां पे, कोई तीर्थ स्थान था क्या है? क्या हमारे राम जी इस जगह से निकले थे वनवास के समय है? या यहां पे कोई लीला थी, किसी तपस्वी की कर्म भूमि थी, कोई मंदिर वगैरह है, कोई भक्तों का घर है? तो विचारों ने जो जो अपनी तरफ से समझ सकते थे कोशिश करी पता करने की। वहां गांव था, वो बोला नहीं महाराज यहाँ तो और कोई नहीं है, हम लोग छोटा गांव में रहते हैं। हाँ ये कोई बाबा जी पास में रहते जरूर ना, वो बोला जरूर दर्शन करना है। वो गए, बड़ा अच्छा लगा उनको उनके पास। उनसे निवेदन करा, प्रार्थना करी, बोलते हैं बाबा जी हमको बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आप क्या साधना करते हैं हमको प्लीज बताइए। बोलते बेटा हमको और कुछ नहीं पता है, हम तो अनपढ़ हैं, एक चीज हम पूरे दिल से करते हैं, बस यही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। जैसे कभी हम लोगों को पीड़ा होती है तो आंसू निकल आते हैं, जैसे हमारे स्वजनों को पीड़ा होती है तो मन के अंदर दर्द होता है, प्रार्थना निकलने लगती है। वो बोलते हैं हम पूरे दिल से बस ये भावना रखते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, जो हम कर सकते हैं यहां किसी की सेवा जितना संभव हो कर लेते हैं, लेकिन हमारा हृदय, हमारे रग रग में यही भावना जो है संचारित हो रही है कि सब लोग सुखी हों। हम वो दुनिया देखने की ही आतुरता रखते हैं कि सबका कल्याण हो। विचार इतना प्रभावशाली होता है, संकल्प इतना बलवान होता है कि आज बाकी कुछ जीवन में करते हैं वो संकल्प की वजह से होता है, और संकल्प जब प्रभावी होता है तभी कर्म अच्छे होते हैं, जब कर्म अच्छे होते हैं तभी व्यक्तित्व अच्छा होता है, तभी समाज अच्छा होता है, प्रारंभ संकल्प से होता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते, हे कामना अनेकों प्रकार से तुमने हमको संतप्त करा हुआ है, कैसे तुम उदित होती हो, हमारे हृदय में कैसे कामनाओं के वेग आते हैं, कैसे आंधी तूफान आते हैं। बोलते जब हमने गहराई में देखा हमारे मन के अंदर ये संकल्प तीव्र चाह, हम बस ये तीव्र चाह रखें कि सबका कल्याण हो, कम से कम इसी दुनिया में एक छोटा सा आइलैंड बनने लगता है, द्वीप बनने लगता है, हमारे परिवेश में नैतिकता की सुगंध प्रसारित होने लगती है। इतने प्रकार के अनैतिक कार्य हो रहे हैं। आज जब पर्व आता है, कोई धार्मिक पर्व हम लोगों का दिवाली वाली, तो अखबार बताते हैं कि मिठाई मत खाना। बोला रे भाई मिठाई क्यों नहीं खाना। अभी हम लोग इंदौर से आ रहे, वहां कल ही पेपर में आया था कि इतने टन मावा नकली पकड़ा गया। हे राम, एक जगह यहां पे अखबार में आया इतने लीटर जो है नकली दूध पकड़ा गया। देखिए क्या स्थिति हो रही है, हम लोगों का लोग पिएंगे वही दूध, यही मावा, घी नकली पकड़ा जा रहा है, दवाइयां नकली हो रही है। दीज आर कॉल्ड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। जो करने वाले हैं क्या हो गया उनको, उनके लोग उनके बच्चे कहीं भूत से वो ना खा ले। एक बार एक नेता जो है बीमार हुए तो उनको लंदन भेजा गया, तो लोगों ने बोला ये लंदन क्यों जा रहे हैं आप, आपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी स्थापित कर दिया है, अनेकों रिसर्च सेंटर स्थापित कर दिए, तो वहां क्यों जाते हैं। बोलते नो आई कैन नॉट रिलाय ऑन दीज फेलोज, यू नो, इसीलिए जो रिलायबल है हम उनके पास जा रहे हैं। हम ऐसा समाज बनाते जा रहे हैं कि हमको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है इनके ऊपर। अपने देश में ही हर चीज में दुर्दशा, अनेकों संबंधों में अनैतिकता है। हम अपने दिल में झांक के देखें, हम अनेकों प्रकार के संबंधों में कितने सच्चे रहते हैं। हमारे वचन की प्रतिबद्धता कोई दूसरा जबरदस्ती नहीं कर रहा है। एक बार हमारे माता पिता में झगड़ा हुआ, तो घर में महाभारत सबके चलती रहती है, हमारे वहां भी चली। तो हमारे पिताजी, उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो आए बोलते बेटा शादी मत करना कभी। और जिस समय हम सन्यासी हो गए तो हमने उनको याद दिलाया, बोला पिताश्री आप ही ने बोला था। उसे बेटा वो तो मजाक कर रहे थे, वो तो जिस समय जो ऐसे गुस्सा आती है तो हमने बोल दिया था। बोला अभी हम क्या जाने। आपकी समस्या उस समय जो हमको परिवेश में प्राप्त हुआ, अगर हम नैतिक चीजों से युक्त हैं, हमारे परिवार को, हमारे समाज को हर जगह आशीर्वाद प्राप्त होता है। कितने हम लोग परिवार में सच्चे हैं, बिजनेस के अंदर कितना जो है वह जो भी शेयर होल्डर है उनके प्रति कितनी सच्चाई है। एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है बिजनेस एथिक्स के अंदर, विसल ब्लोइंग। इज विसल ब्लोइंग रियली एन अनएथिकल एक्ट? वो नेशनल हाईवे का जो है वह बिहार में, वो एक दुबे जी थे ना, वो बेचारे मारे गए। उन्होंने बोला कि यहां पे जो भी हाईवेज बन रहे हैं, यहां कॉन्ट्रैक्टर्स और पॉलिटिशियंस का जो भी यहां पे गठजोड़ चल रहा है, असली चीज ही नहीं कर रहे, सब खा रहे, गलत काम कर रहे। उसने पहले तो अपने डिपार्टमेंट में ही आवाज उठाई, बोला कि ये भाई देश का सवाल है, ये हाईवे बड़ी मुश्किल से बन रहा है और यहां हमारा भी गांव है, जरा अच्छी रोडें बन जाए तो अच्छा है ना। बोला चुप रहो भाई, अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसने जो है नैतिकता की दुहाई दी, बोला नहीं हमको सत्य के लिए ही जीना है। बेचारा अपना मारा गया। ऐसी दुर्दशा हो गई है कि यहां पे अगर कोई आदमी मरा पड़ा हुआ है, घटना कोई दुर्घटना हो गई है, घायल पड़ा हुआ है, कितने लोग हैं जिनको उठाने में भी चिंता होगी। क्योंकि अगर हम मदद करते हैं तो कितनी मुसीबतें हो जाएंगी, पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, तुम वहां खड़े थे तुम्हीं ने टक्कर मारी हो, तुम ही जड़ हो इस समस्त चीजों की। अनेकों प्रकार की चीजें ऐसी धीमे धीमे होती जा रही हैं। अपनी चिंताओं से युक्त होके, अपने जो है वह डर से युक्त होके, असुरक्षा से युक्त होके, तभी हमारे मूल्यों का ह्रास होने लगता है। नैतिकता तो जब है जहां पे हम बाहर भी अभिव्यक्ति करें। एक फायर ब्रिगेड वाला होता है, जहां पे आग लगती है तो वो जाके पानी ले जाता है, बुझा देता है। एक बार हमारे गुरुजी आए, हम लोग से बोलते हैं तुम सबको फायर ब्रिगेड बनना है। बोला ये आज हमारे गुरु महाराज को कौन सी प्रेरणा हो गई और फायर ब्रिगेड बना रहे हमको। हम बोला महाराज जी ये क्या मतलब? बोलते हैं देखो जहां आग लगी है तुमको जाके बुझाना है, हृदयों में संताप है, समाज में पीड़ा है, यहां दुख दर्द है, गांव गांव में समस्या है, तुमको जो है पूरा जीवन समर्पित करना है लोगों के हृदय में पीड़ा और संताप की आग बुझाने के लिए। तुम्हारा धर्म केवल तभी है जब तुम दूसरों की सेवा कर पाओ। लेकिन एक चीज है, जिस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाती है तो एक मिनिमम आवश्यकता उसमें पानी होना चाहिए। खाली टंकी से जाके हम आग थोड़ी बुझा सकते हैं। हमारी टंकी भरने के लिए ही हमको सत्संग करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे हृदय को प्रेम से भरना है। तो जिस समय आदमी ऐसे विचार, ऐसी संस्कृति, ऐसी धरोहर उसका आश्रय लेता है, जहां पे हम खुद इस चीज से परिपूर्ण हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। हम लोगों को अपनी नैतिकता का जीवन प्रारंभ करना चाहिए अपने परिवारों से। हम लोगों की परिवार ही इकाई होती है समाज के अंदर कल्याण के लिए। भगवद गीता के अंदर अर्जुन ने जिस समय प्रथम अध्याय में विषाद योग नामक प्रथम अध्याय में भगवान कृष्ण को दलीलें दी कि हमको नहीं लड़ाई लड़नी है, उसकी दलील का एक बड़ा मुख्य बिंदु यह था कि हे प्रभु, यहाँ इतने लोग मरेंगे तो इतने परिवार जो है खत्म हो जाएंगे, और परिवार जो है समाज की इकाई है। वो विधवाएं क्या करेंगी, वो महिलाएं क्या करेंगी, वो बच्चे क्या करेंगे, उनको क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा, और धीमे धीमे हमारा समाज का ढांचा चरमरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। परिवार की ऐसी सुंदर, कुल धर्म की ऐसी दुहाई देता है वो, कि आज भी लोग जो हैं उस चीज को पढ़ के बोलते हैं या अर्जुन वाज राइट। और खासकर युधिष्ठिर तो बोलता था, क्या नाम है, धृतराष्ट्र बाद में बोलते हैं ये भगवान कृष्ण ने लड़ाई करवा दी थी। बोला अच्छा, भगवान कृष्ण ने लड़ाई करवाई? बोलते हैं हाँ, देखो अर्जुन तो बोल रहा था नहीं लड़ाई लड़ेंगे, इन्होंने लड़ाई करवा दी। बोलते हैं क्या वो नहीं होते तो लड़ाई नहीं होती थी? जो दुष्कर्म कर रहे हैं उन्होंने लड़ाई लड़वाई है। ये तो उनको जो है कॉम्प्रोमाइज के पैकेज लेके गए थे कि छोड़ो भाई, परिवार का मामला है, दोनों आधा आधा बांट लो, उतना भी नहीं है तो इनको 5 गांव दे दो, 1 गांव 5 घर का दे दो, 1 घर 5 कमरों का दे दो, कुछ तो करो ना। जहां पे कोई ऐसी अपने स्वार्थ की पूर्ति की जिद में पड़ा हुआ है वो ही अंधा हो जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोगों के अंदर नैतिकता का ह्रास क्यों होता है। इसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत महत्वपूर्ण विचार देती है हमको। स्थित प्रज्ञ नामक प्रसंग में 2 अध्याय में जहां पे कोई ज्ञानवान है उसकी चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, हमने जिस समय इंसान को भेजा था बहुत सुंदर विचार था उसका, हर बचपन में आपकी फोटो भी देखिए क्या चमक होती है, सुंदरता होती है, मासूमियत होती है, इनोसेंस होती है। धीमे धीमे हम लोग बड़े होते हैं तो चिंता बढ़ने लगती है, विकार बढ़ने लगते हैं, अभिमान बढ़ने लगता है, अनेकों प्रकार की समस्या होने लगती, अनैतिकता के इशू बन जाते हैं कि यहाँ पे अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाओं को, गवर्नमेंट को एथिक्स कमीशन्स बनाने पड़ते हैं। अमेरिका में एथिक्स कमीशन है, पूरा जो है एथिक्स के बारे में विचार करा जाता है। बोलते हैं समाज की संरचना कर दी लेकिन अनएथिकल है, कोई प्रयोजन ही नहीं है। विदाउट एथिक्स देयर इज नो लाइफ। आपस में विश्वसनीयता नहीं है, क्या रिश्ता भी बन सकता है? पति पत्नी में कोई विश्वास ही नहीं बचा है, क्या रिश्ता बन सकता है? समाज में हमको खाना खाने में मुश्किल है क्योंकि विश्वास ही नहीं है, क्या मिला के लाए? यहां ऐसी चीज मिलाते हैं कि अपने को यही बोलना पड़ता है कि हमारा डायबिटीज होने में ही आज कृपा है। एक सज्जन बोला महाराज जी मिठाई खाइए। बोला नहीं, हो चुके हैं भैया मिठाई, बहुत अच्छे पूरे मीठे हो गए। हमने जो है बुद्धिमत्ता से अपनी मिठाई का कोटा उसी जमाने में खा लिया था जब मिठाई शुद्ध हुआ करती थी, अब हमको नहीं खा। कहां विश्वास है, किस चीज को खाए हम, और कहां जाके आप हवा लो शुद्ध? बोले चलो हम लोग जो है प्रकृति के गोद में चले। क्यों शहर को ऐसा बना लिया है जहां पे हवा लेना भी दुश्वार हो गया है? ये सब अनेकों प्रकार के एनवायरमेंटल एथिक्स, बायोमेडिकल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, पर्सनल एथिक्स, सोशल एथिक्स, अनेकों प्रकार के कैटेगरीज बन गई हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के श्रेणी बनाए गए हैं, रिसर्च हो रही है कि हमको एथिक्स का पालन करना चाहिए। ये केवल तभी होता है जिस समय आदमी के अंदर कुछ संवेदना की कमी हो जाती है। संवेदनशील इंसानों को ऐसी चर्चाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिनके अंदर संवेदना खत्म हो गई है उन लोगों के लिए ही ये चर्चा और चिंतन का विषय होते हैं। जहां पे कोई सही में धर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वो सबकी मदद करता है। यहां पे हम अपने आप से उलझ गए। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता के जो प्रसंग का हम रेफरेंस दे रहे थे, बोलते हैं अर्जुन देखो ऐसे इस प्रक्रिया से जब आदमी चलता है तो वहां पे बुद्धि नाशात प्रणश्यति, आदमी की बुद्धि का नाश हो गया है। और कैसे हुआ है वो हमको पूरी प्रक्रिया बताते हैं। बोलते हैं कोई आश्चर्य नहीं है, कोई बड़ी नवीन चीज़ नहीं है, इस चीज़ को अच्छी प्रकार से रिसर्च करके देखो। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्जुन, इंसान अपनी बुद्धि का नाश स्वतः कर रहा है, उसको बस पता नहीं है, उसके अंदर अज्ञान है कि क्यों हमारी बुद्धि मोटी होती जा रही है, क्यों हमको ऐसा अनेकों चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्यों अनेकों प्रकार से संवेदनाएं नहीं होती हैं, क्यों अपने आप से उलझे रहते हैं, क्यों हमारे मन में घुटन और पीड़ा और शोक का ही साम्राज्य चल रहा है। इसके लिए कोई भगवान जिम्मेदार नहीं होते। हम लोगों का कुछ विचार होता है जिसके वजह से नैतिकता का ऐसा ह्रास होने लगता है, इस प्रकार से पतन होने लगता है, और फिर ये ज्वलंत मुद्दे बन जाते हैं। हम सब लोगों को अपने हृदय में एक संवेदना का दीपक जलाना है, एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, तभी आप वास्तविक दिवाली मनाएंगे, तभी आप जो है अपने जीवन के अपने परिवार के अंदर कल्याण करेंगे। देखिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए कि आप जब भी आपके आगे की संतान आदि को कल्याण की बातें कुछ दिखाई पड़े तो आपकी याद आनी चाहिए, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी वो इस प्रकार से जीते थे, सबके प्रति कल्याण की भावना होना। हम लोग को यह हृदय से प्रार्थना करना, हमारा कुछ हो ना हो हमारी तो भगवान देखभाल करेंगे, अपना ठेका भगवान को दो। भगवान बोलते हैं लेने को तैयार है, तुम देने को नहीं रेडी होते हो। गीता के 9वें अध्याय के अंदर भगवान का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC वालों ने यही ले लिया ना वाक्य, योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण बोलते हैं आपके योग और क्षेम का हम सर के ऊपर वहन करके आपके कल्याण के लिए लाएंगे, विश्वास करो। देखो कौन पशु पक्षी चिंता करते हैं अपनी है? कौन देखभाल कर रहा है उसकी, जबरदस्ती की चिंता। हमारी जो भी चिंताएं होती हैं वो केवल अज्ञान और मोह से होती हैं, वस्तुतः यहां चिंता की कोई गुंजाइश नहीं है। जब अर्जुन बड़ी दलीलें दे रहा था, भगवान ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम, इसलिए जो है बोलते हैं यू आर जस्टिफाइंग योर ग्रीफ, आप अपने शोक का प्रमाण दे रहे हैं, औचित्य स्थापित कर रहे हैं। वो मुस्कुरा के देखते हैं, प्रहसन्न व भारत, बोलते हैं अर्जुन तुमको पता है कि कौन समझदार इंसान होता है, अशोच्यानन व शोचस्तम प्रज्ञावादाम सुभाषा से गतासूं न गतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो भी विद्वान जो समझदार इंसान है न जो है विद्यमान वर्तमान के प्रॉब्लम्स के लिए चिंता करता है, नहीं पास की किसी चीज के लिए चिंता करता है, तो फेलो लर्न्स द राइट लेसन्स। हम शिक्षा लेते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, हमको जो है शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उसने लर्न द राइट लेसन्स, मत अपने जो है अनेकों कमियों को विकारों को जस्टिफाई करो, यह अज्ञान से होता है, हमारी नासमझी से होता है। जब जब चिंता, जब जब संताप, जब जब मुसीबत होती है केवल हमारे अज्ञान से होती है। बंबई में एक फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो एक बार हमारे पास आए, बोलते हैं वो बाकी बड़ा अच्छा इंसान है, भगत आदमी है, और वैसे हमने देखा है फिल्म वाले ज्यादा भक्ति करते हैं, इतने स्टेक्स हाई होते हैं कि बोलते हैं भगवत भरोसे ही है सब काम। तो वो सज्जन जो है वह बाकी तो भगवान का बड़ा भरोसा करता था, लेकिन एक उसमें फोबिया बैठा हुआ था, और वो था कि जिस समय बरसात होती थी बिजली कड़कती थी तो उसके अंदर कोई डर बैठ गया था बचपन से ही, एक बार एक गठान ऐसी बैठ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है निकलना। अब बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा इंसान हो गया, 6 फुटा इंसान है, लंबा चौड़ा पंजाबी शरीर है, खाता गोरा मोटा ताजा, لیکن جہاں برسات چالو ہوئی وہ چوہے کی طریقے سے بل میں جا کے بیٹھتا تھا, اور اس سمے کیا کرے, وہ ڈر کے مارے پینا چالو کرتا تھا, گھر والے بھی دکھی تھے, الکوہلک ہو گیا تھا, اپنے شریر کا نقصان کر رہا, پیسے کا نقصان کر رہا, سب اس کے وجہ سے. تو ہمارے پاس کسی پرکار سے آیا, ہم نے بولا دیکھو تم کو پتا ہے نا سب اجان سب پرابلم پیڑا شوق اجان سے ہوتے, بولے سوامی جی سب سنا ہوا ہے, یہ کوئی ہیلپ نہیں کرتا ہے. ہم بولا نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے, ایک تم کو ہم پوائنٹ بتاتے ہیں بس, باقی چیزیں ٹھیک ہیں. بولتے ہیں آپ بتائیے, آپ بھی بتا دیجیے. بولے دیکھو آپ نے سائنس پڑھی ہے کیا؟ بولتے ہیں یس آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس, اسکول میں پڑھی تھی, کالج میں پڑھی تھی, کسی طرح پاس ہو گئے تھے لیکن پڑھی تھی. ہاں بولا ہاں بس اتنے کافی ہے. تم کو پتا ہے کہ دی لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ؟ بولتے ہیں ہاں یہ تو پتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے, اس سے بجلی کڑکنے کا کیا لینا دینا, یہ تو ہمارے اوپر کیڑکی جا رہی ہے. بولا دیکھو جس سمے آپ کو جو ہے آواز سنائی پڑتی ہے بجلی کڑکنے کی, اس کا کیا مطلب ہے؟ بولتے بجلی ہمارے اوپر آ رہی اور کیا مطلب ہے؟ بولا نہیں وہ بات نہیں ہے, آپ ذرا وچار کرو, جب جب بجلی کڑکنے کی آپ کو آواز آتی ہے, یہ ساؤنڈ کافی دیر بعد آپ کے پاس پہنچا ہے. بجلی تو جہاں گرنی تھی گر چکی ہے بھیا. بولتے وہ تو بجلی کڑکی تھی گر گئی اور تو بعد میں آواز آ رہی ہے. بولتے ہو گاڈ یس سوامی جی دیٹ از اٹ, آئی ایم ٹوڈے آئی ایم لبریٹڈ. وہ ناچ اٹھا وہ ویکتی, ایسی خوشی سے جھوم اٹھا. اس کے بعد وہ دوسری بار ہمارا بمبئی میں برسات میں پروچن ہوا, وہ آگے کی رو میں بیٹھے ہوئے تھے. بولا واہ بھائی, اس کو بولتے ہیں مکت ویکتی. ہمارے من کے وکار, ہماری اسرکشا, ہماری چنتائیں, ہماری گھٹن جو کہ سوارتھی بننے کے لیے ہم کو مجبور کرتی ہیں, اور اسی سوارتھ کی اندھے پنے میں ہماری سمویدنا دنیا کے پرتی ختم ہو جایا کرتی ہے. وہ چنتائیں کیول اجان سے ہوتی ہیں. ہم اگر اس اجان کو ہینڈل نہیں کرتے ہیں, then we are working to sustain the problems of every human being. من کے اندر اس وکار کی جڑ کو دور کر دیں. آپ سب روٹری والوں کو بھی یہی ہم آہوان کرتے ہیں, with such a great magnanimous values which inspire and motivate you. آپ لوگ سوچیے کہ کیول یہ بولنا کہ ایسا ہونا چاہیے, that is one thing, but how it can be possible. ہر انسان کے من کی اسرکشا, اس کی گھٹن, اس کی چنتا جب تک ہم دور نہیں کریں گے, اینڈ دیٹ از ناٹ فرام جسٹ سیئنگ دیٹ یو داؤ شیل ڈو دس اینڈ داؤ شیل ڈو دیٹ, یہ تو سنتے آئے ہیں. وہ ادھیاتمک رہسیہ جس سے منشیہ کا سشکتیکرن ہو, امپاورمنٹ ہو, اندر بل ہو, آتم بل ہر انسان کا اتپن ہو, ہر منشیہ یہاں پربدھ ہو, اپنے اندر سکھی ہو سکے, اپنے اندر سرکشت ہو سکے, تبھی آپ کی واستوک دیوالی ہو پائے گی. آپ کو اس دیپاولی کے شبھ پرو پہ بہت بہت شبھ کامنائیں ہیں. ہمارا یہ پرارتھنا ہے آپ سب کے ہردے میں یہی پرمانند کے آتم بل کا دیپک جلے, اور ایک بار آپ کے ہردے میں ایسا دیپک اپنی بارے میں نشچنتتا کا عالم ہوگا تو باہر کیسی دنیا ہوگی یہ سب لوگ جانتے ہیں. اچھا بڑپن سے یکت انسان جہاں ہوا کرتے ہیں وہ دھنیہ ہے پریوار, وہ سماج بھی دھنیہ ہو جاتا ہے. بس اپنی چنتاؤں سے اوپر اٹھنا یہی جو ہے راز ہے, یہی ایک ماتر سندیش ہے, اور یہی تو آپ کے بھجن یوگ دھیان آدی کے ہی پریوجن ہے. جس سمے آپ نیمت روپ سے اپنی یہ سب سادھنائیں کرتے ہیں, آپ اپنے اندر ایسی ہی پورنتا میں تو جگنے کی سنکلپ کرا کرتے ہیں. اس دشا میں جو ویکتی آگے بڑھتا ہے اس انسان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ تم کو نیتکتا کا جینا چاہیے. वो घर धन्य है, वो परिवार धन्य है, वो परिवेश धन्य है, वो पशु पक्षी धन्य है, वो कुल धन्य है, वो विश्व धन्य है। आप इसी दिशा में आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामना और आशीर्वाद है। Thank you very much and a very very happy Diwali once again. अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो हम देख लें थोड़े बहुत। जितने भी अध्यात्म ज्ञान के लिए अनेकों संस्थाएं हैं अपने देश में, वो जो भी ये काम कर रहे हैं वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप समाज की उपेक्षा करके फिर कोई काम करिए, बल्कि हमारे जो भी साधना अनेकों भक्ति भाव ज्ञान मूल्य इनका जो संचार होता है, इसके औचित्य की कसौटी समाज की संवेदना होती है। What is really right is tested with reference to society. अगर हमारे मन के अंदर ज्ञान और भक्ति या प्रेम का संचार हो गया है, कैसे पता लगेगा? समाज में अभिव्यक्ति होनी चाहिए। समाज की अभिव्यक्ति इसको एक कसौटी समझना चाहिए, इसको विकल्प नहीं समझना चाहिए। दिस इज नॉट अ चॉइस आइदर दिस वे और दैट वे, दिस इज अ टेस्ट कि आपके अंदर आपने नियमित रूप से जो साधना करी है उस साधना से अपने परिवार, अपने समाज, अपने परिवेश, अपने देश में कितनी सुंदरता का संचार करा है, कितनी अच्छी संवेदना का संचार करा है। इनफैक्ट अगर कुछ लोग इस प्रकार से आक्षेप करते हैं कि कोई भी ऐसी आध्यात्मिक संस्था से अगर संबद्ध होता है तो पागल हो जाता है, शायद ऐसे लोगों को देख के ये कहा जा रहा है जो साधना के चक्कर में अपने परिवार को भूल रहे हैं। जो साधना के चक्कर में अपने बच्चों को भूल रहे हैं, जो अपने समाज को भूल रहे हैं, ये शिक्षा हम लोगों के कोई भी संत लोग नहीं देते हैं, ये भगवान नहीं देते। यही जो है संस्था के जो स्थापना करने वाले हैं, हम जानते हैं ब्रह्मा कुमारी के जो संस्थापक हैं, उन्होंने अनेकों विधवाओं के प्रति संवेदना से इसी पूरे कार्यक्रम का शिलान्यास करा था कि यहां पे समाज में अनेकों विधवाएं थीं, उनको कोई सहारा नहीं था, उन्होंने जो है उनके सहारा देने के ही प्रक्रिया से समाज में सेवा प्रारंभ करी। अगर ऐसे संस्थापक हैं तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि समाज की सेवा की उपेक्षा भी हम कर सकते हैं। अगर उस संस्था के प्रति आप अच्छी प्रकार से निष्ठ हैं तो आप नियमित रूप से साधना करने के बाद एक ऐसे पुष्प बनेंगे जिसकी सुगंध आपके परिवेश में निस्सृत होनी पड़ेगी। अगर आपकी साधना से आपके अंदर ऐसी सुगंध अभिव्यक्त नहीं हो रही है तो आपकी साधना को जरा दोबारा विचार कर लेना, उसमें कोई खोट हो रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर सद्विचारों से उसकी सद्भावना नहीं जगती है तो विचार सद्विचार नहीं है, असत विचार है। इसीलिए इसको कभी विकल्प मत समझिए कि या पारिवारिक या साधना या समाज, बोलते नहीं, समाज की सेवा तो आपके प्रभु इन सब में है, आपके भगवान ने इन सबको बनाया है। हमारे सब शास्त्र बोल रहे हैं वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सब में हमारे प्रभु हैं तो प्रभु की सेवा कैसे नहीं करें। हमारे हृदय में भी प्रभु को ढूंढ रहे हैं और सबके हृदय में भी प्रभु को देख रहे हैं। यही जो है समस्त अध्यात्म का संदेश है, इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अरे हो जी
राम गुरु
हो,
ने कहा बहुत सुंदर था, लेकिन के नियम पे आपके प्रति आपके विचारों के प्रति जागृति हो गई, संसार क्षमा होने का निश्चय किया गया है, कोई करने वाले हैं, लेकिन सद्य स्थिति में आप देखते हो गए, हम सभी सभी देखते हैं कि संवेदन संवेदनशीलता का ह्रास हो रहा है, प्रेम प्रति के ह्रास हो रहा है, माया वात्सल्य अपनापन ज्येष्ठों का सम्मान करना उनकी पूजा करने की जरूरत है, कम से कम सम्मान करना भी आजकल आजकल की पीढ़ी सोचती नहीं। आप बोल रहे हैं कि आप खुद अच्छे हो जाएंगे तो समाज भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं आजकल, हम बोलेंगे हमारी जवान पीढ़ी, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरे बाकी का ब्लॉक में जो प्रॉब्लम हो गया है तो मुझे प्रत्येक चीज के बोलेंगे काय को उधर जनरेटर पड़ रहे हो, कोई साइकिल कोई करेगी काय को उधर जाता है, क्यों मदद करता है। ये भावना आजकल इतनी प्रबल हो रही है उसके प्रति दुख होता है, लेकिन दुख सभी बोल सकते हैं, उसके प्रति इकट्ठा नहीं होते हैं और फिर उसके प्रति जागरूकता नहीं लाते हैं, इसके बारे में आप बोलिए। वैसे ही स्वामी के प्रति आप और आपके जैसे आदरणीय छोड़कर जबर जगह भी इतने स्वामी हो गए हैं, जनता पागल जैसे उनके पीछे पड़ रही है और उनके प्रति प्रचंड स्वार्थ है। ईश्वर के प्रति भावना, जनता के प्रति भावना, उसको अच्छा ही बताना, उनको समझाना एक कला है और एक सुंदर कला जो प्रभावित करती है समाज को, तो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये असल में ऐसे कितने साधु मैं आपको बता सकता हूँ या नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि वो समाज को पागल बनाते हैं, समाज के प्रति जितनी श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, बोलो कि समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति बोलिए, वो नहीं होती है। तो दिन पे दिन
ये जो आपने विषय उठाया है, यही यहाँ पे रोटरी के एथिक्स कमेटी के भी प्रेरणाएं हैं। वो जब ऐसी संवेदन शून्यता देखते हैं तो उनके भी हृदय में ये पीड़ा हो रही है, और इसीलिए कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। इन लोगों ने ये कार्यक्रम इसीलिए आयोजित करा है कि हम सब मिलके इस ऐसे बिंदुओं के ऊपर चिंतन करें और आइडेंटिफाई करें कि हम लोग कैसे कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे दुनिया में कितने सारे लोग हैं, हम लोग किसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? वी हैव टू स्टार्ट विद आवरसेल्व्स। कितने साधु संत हैं, हम उनके स्पोक्समैन नहीं हैं। यहाँ पे कोई भी ये कपड़ा पहन ले उससे साधु नहीं बन जाता है। और अगर यहाँ पे हम लोगों के देश में वैचारिक स्वतंत्रता है, यही तो एक देश है जहाँ कोई भी धर्म, कोई संप्रदाय, कैसे विचार भी यहाँ रह सकते हैं, ये हमारा बड़प्पन है। हाँ, जब ऐसे अनेकों प्रकार के विचार किसी जगह हो सकते हैं, देन द चॉइस इज ऑलवेज विद अस। हम लोगों को चूज करना है ना। अब आप बोलते हैं कि हाँ कोई आदर्श नहीं मिलता है, वाई डोंट यू बिकम दैट आदर्श? आप अपने बच्चों के लिए खुद ही वो रोल मॉडल बनने की कोशिश करिए। बच्चे बचपन से ही आपको देख रहे हैं, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। व्हाई शुड वी ट्राई टू लुक अपॉन सम रोल मॉडल आउटसाइड आवरसेल्फ्स? श्री गणेश हम अपने आप से करें। अब हम अगर यहाँ पे पड़ोस में कोई प्रॉब्लम है, हम नहीं जा पाते हैं, आपकी पत्नी को शंका हो रही है कि हाँ भाई क्यों लफड़े में पड़ते हो जाके, यू नीड टू डिस्कस इट ओवर। आपको यह प्रमाण देना पड़ेगा कि नहीं, जैसे उसको दिक्कत है पड़ोसी काम आएगा, कल हमको दिक्कत होगी कौन काम आएगा? अगर हम उदारता से नहीं स्वार्थ से भी देखें तो भी सेवा करनी चाहिए। तो इसीलिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स। और अगर आपको तो भी यहां पे अपने अंदर भी आज कोई दिक्कत होती है, डजंट मैटर, वी हैव सो मेनी रोल मॉडल्स इन आवर कंट्री। हम लोगों के अवतार पुरुष ही रोल मॉडल्स होते हैं, हमारे हनुमान जी रोल मॉडल होते हैं, हमारे जो अनेकों हर प्रदेश के, हम देश के किसी भी कोने में जाए वहां के संत लोग हुए हैं जिन्होंने सब लोगों को एक मार्गदर्शन प्रदान करा है। महाराष्ट्र के संत लोगों का तो कैसा महान यहाँ योगदान रहा है, एक से एक उनके भजन देखिए, अभंग देखिए, क्लासिक, अमेजिंग, इतना सुंदर उन्होंने होता है। दैट इज नॉट वेरी फार बिहाइंड हिस्ट्री, अभी रिसेंट बातें हैं। किसी की खुशियों के लिए अपना जीवन समर्पित करना, अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत पुराने नहीं, अपने ही परिवेश में, आपके शायद पूर्वजों में आपको रोल मॉडल मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है, देन यू हैव अ चैलेंज, यू हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। That is the minimum which we can do for our own children's sake. अगर कोई कमियां हैं तो हमको कमियां दूर करनी है, not for yourself but for your children. So don't look upon anybody else. और जहां तक दूसरों की बात है, हम अगर अच्छाई देखने जाएंगे ना, कबीर दास जी बोलते हैं ना, बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई जो, दिल देखा अपना मुझसे बुरा नहीं कोई। प्रॉब्लम तो यहाँ है ना, हम अपने अंदर अपने आप को ठीक करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। यही समस्त अध्यात्म का संदेश है। यू स्टार्ट वेरी हम्बली, थोड़ा एक एक कदम बढ़ाइए, भगवान पे विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए, अपने पूर्वजों पे विश्वास करिए, दैट यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट, तभी जाके अच्छा होता है। हाँ जी, एनीबडी एल्स? या प्लीज संक्षेप में, थोड़ा समय कम है, ओ थोड़ा ऑन कर लीजिए उसको।
सवाल यह है स्वामी
जी
कि मुख्यत्व प्रभु प्राप्ति के लिए दो रास्ते माने जाते हैं, एक भक्ति जो संपूर्ण समर्पण का मार्ग है, दूसरा ज्ञान तप और साधना। तो समाज को उन्नत करने के लिए ये दो में से कौन सा मार्ग आम आदमी को अपनाना चाहिए
जी?
अगर आप मार्गदर्शन देंगे तो
बहुत सुंदर प्रश्न है, वेरी नाइस, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू, थैंक यू। ये जो दो बातें आपने बताई कि मन में भक्ति हो और बुद्धि में ज्ञान हो, इन दोनों को भी आप विकल्प मत समझिए, इन दोनों का समन्वयात्मक एक मार्ग पकड़िए। किसी व्यक्ति में भावना हो और ज्ञान न हो, किसी में ज्ञान हो और भावना न हो, ये दोनों नहीं चलेगा। भावना और ज्ञान का सदैव एक संतुलन स्थापित करना चाहिए। इसीलिए जो भी ये कहते हैं कि भक्ति का मार्ग स्वतंत्र है, ज्ञान का मार्ग स्वतंत्र है, वो दोनों गलत बोलते हैं। आपके अंदर बुद्धि भी है और आप में भावना भी है, आपकी भावना का भी उत्कर्ष हो, आपकी बुद्धि का भी विकास हो, ये दोनों आवश्यक है। इसीलिए गीता में जो पाठ हमको भगवान कृष्ण बताते हैं वो इंटीग्रेटेड योग है, कि भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम्ही को भक्ति करनी है, तुम्ही को ज्ञान प्राप्त करना है। जिन्होंने ऐसा कुछ विश्लेषण करा है कि ये दोनों स्वतंत्र मार्ग हैं, वो अपने व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण नहीं है उसमें। मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मई एव अत ऊर्ध्व न संशय। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी भावना दोनों हम में लगाओ, गीता के 12वें अध्याय का ये प्रमाण है। हरिओम। Well, number one, Yudhishthira did not technically commit an unethical act. Yudhishthira was very, very clear that I am not going to say that Ashwatthama hataha. जिस समय उसको बताया गया कि तुम बस इतना बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया है, तो जो है यह लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो अपना हथियार डाल देंगे, उसने बोला नथिंग डूइंग, वेदर विक्ट्री और लॉस, डिफीट, आई एम नॉट गोइंग टू से दिस अबाउट। तो उसको बताया गया कि तुम ऐसी बात कहो, अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, ये पूरा वाक्य बोलो, हमको ये नहीं पता है कि वो मनुष्य है कि जानवर है, इतना तुम बोल सकते हो, बोलता है दैट इज नो प्रॉब्लम। तो जहां उसने जो है बोला अश्वत्थामा हतः, तब तक तो जो है बात कम्युनिकेट हुई, जहां पे जो है ये कहा नरो वा कुंजरो वा, उस समय अनेकों जो है वो आवाजें कर दी गई। नाउ दैट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ युधिष्ठिर। Yudhishthir in no way committed an unethical act of telling lies. But finally the communication, वो जो effect था वो ये रहा कि हाँ युधिष्ठिर की बात को जो है मान लिया गया, वो बात झूठी निकली। Now this is just a manipulation of a person for a bigger social effect maybe. The micro and the macro, not by Yudhishthira mind you, but by some other politicians. सो अगर ये जो आप आक्षेप युधिष्ठिर के ऊपर कर रहे हैं, आई एम सिंपली निगेटिंग दैट. नाउ सेकेंडली, ये जो आपने कहा है कि दुर्योधन पहले पहुंच गया, युधिष्ठिर से पहले पहुंच गया, नाउ दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. हम लोगों के शास्त्र बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को फल की इच्छा के बगैर उसका निर्वहन करता है तो स्वर्ग का द्वार तो खुल ही जाता है. अर्जुन को भी बताया गया कि अर्जुन अगर तुम इस धर्म युद्ध में लड़ते हो, तुम्हारा विजय हो या पराजय हो उसकी चिंता छोड़ो, लड़ने के एक्ट मात्र से तुम्हारा रिजर्वेशन स्वर्ग का हो गया है. सो दिस मीन एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, अगर कोई अपने ही कर्तव्यों के प्रति निष्ठा का परिचय देता है तो उसकी गति उत्कृष्ट होती है. ये कितनी अच्छी बात है. कोई आदमी कोई चोर रहा हो, बदमाश रहा हो, लुटेरा रहा हो, बट द वेरी फैक्ट दैट द पर्सन इज परफॉर्मिंग सर्टन ड्यूटीज इज इंडिकेटिव ऑफ करस्पॉन्डिंग वर्च्यू इन दैट पर्सन टू दैट एक्सटेंट. ऑफकोर्स ए रिलेटिव थिंग, जितना जो है इसको प्राप्त हुआ, और उसकी रिलेटिविटी उस चीज से पता लगती है कि जो यहां पे दुर्योधन गया था वो जाके जल्दी वापस आ गया था, युधिष्ठिर गए थे तो काफी समय तो रहे थे. तो 5-star होटल में दोनों गए, एक को 5 मिनट का टाइम मिला और एक को 5 वर्षों का टाइम मिला. दैट वॉज द डिफरेंस. सो ऑफकोर्स यू नो दैट इंडिकेट्स दैट एनी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, द मोमेंट दैट पर्सन स्टार्ट्स फॉलोइंग वन्स ओन ड्यूटीज डिलिजेंटली इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट ही इज अ वर्चुअस पर्सन टू दैट एक्सटेंट. और उसका उसको फल मिले नहीं मिलेगा, तो उसको फल मिला लेकिन वहां इट वॉज अ टच एंड गो. गया वापस आया, क्योंकि बाकी लिस्ट में पाप ज्यादा लंबे थे इसीलिए वापस आ गया. तो युधिष्ठिर के ऊपर भी कोई आक्षेप नहीं है और दुर्योधन के जाने में भी कोई समस्या नहीं. इनफैक्ट बोथ हैव अ पॉजिटिव एंगल, बट यस इट इज इंडिकेटिंग दैट देर आर पीपल हु आर गोइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन इन अ मैनिपुलेटिव वन. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन वेदर दैट इज एथिकल प्रैक्टिस और नॉन एथिकल प्रैक्टिस. नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Hari Om, Hari Om. Thank you very much.
Thank you very much for your concluding question and answer session.